नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। पहले चरण के मतदान में केवल 7 दिन शेष होने के साथ चुनाव प्रचार तेज, देशभर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की लगातार रैलियां जारी। भारत ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने नागरिकों से ईरान और इसराइल की यात्रा से बचने को कहा। म्यांमा में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद भारत ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को सिटवे वाणिज्य दूतावास से यांगून स्थानांतरित किया। मार्च महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 4.85% हुई। विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 648 अरब डॉलर पर पहुंचा और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। निर्वाचन आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने पूरे देश के 350 से अधिक चुनाव पर्यवेक्षकों से चर्चा की। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 127 सामान्य, 67 पुलिस और 167 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना भी आज जारी कर दी। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए इस महीने की 19 तारीख तक नामांकन भरे जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। पहले चरण के मतदान में अब केवल 7 दिन शेष हैं। इसके साथ ही देशभर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल संविधान के नाम पर झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जा सकता। बाड़मेर में आज एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव किया और आज संविधान के नाम पर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं होने दिया और देश में आपातकाल लगाया। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश को भाषा, क्षेत्र और जाति के आधार पर बांटना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र के बारे में कहा कि इंडी गठबंधन के लोग कितने नफरत से भरे हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू करके जल की समस्या को समाप्त करने की पहल की। श्री मोदी ने कहा कि जब कच्छ बदल सकता है तो बाड़मेर भी बदल सकता है।
हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आज सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे तीसरे टर्म में मैं रिफाइनरी का उद्घाटन करने जरूर आऊंगा।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीमावर्ती गांवों और जिलों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये जिले दशकों से विकास से वंचित हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए सरकार केवल कुछ अमीर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। आज तिरुनेलवेली में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के जरिए विपक्षी दलों को धमकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है।
Today, there is an ideological battle taking place in India. On one side are the ideas of Periyar, social justice, freedom and equality. And on the other side are the ideas of the RSS, Mr. Narendra Modi and his government.
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कूचबिहार में आज एक जनसभा में भाजपा प्रत्याशी निशित प्रामाणिक की कड़ी आलोचना की। सुश्री बनर्जी ने कहा कि प्रामाणिक पशु तस्करी और असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवादा में एक जनसभा की। श्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि उनके 15 वर्षों के शासन के दौरान राज्य में पूर्ण अराजकता थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने बिहार की जनता के लिए कई विकास कार्य किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गया, नवादा और जमुई में सभाएं की। गया में श्री यादव ने कहा कि इन चुनावों में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई है, लेकिन भाजपा लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गया के वजीर गंज, चाकंद और फतेहपुर में कई सार्वजनिक बैठकें की। गुजरात में लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनावों के लिए नामांकन का काम आज शुरू हो गया। राज्य में लोकसभा की 26 और राज्य विधानसभा की 5 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। पर्चों की जांच 20 अप्रैल को की जाएगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने कहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की निगरानी के लिए राज्य में 756 उड़नदस्ते काम कर रहे हैं। जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हमारे जयपुर संवाददाता ने खबर दी है कि इस दौरान जयपुर संसदीय सीट के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है।
जयपुर में अब तक एक उपचुनाव समेत लोकसभा के कुल 17 चुनाव हुए हैं। इनमें से 4 बार कांग्रेस ने, भाजपा ने 7 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 3 बार, जबकि 3 बार निर्दलीय व अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। भाजपा के गिरधारीलाल भार्गव ने इस सीट पर 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 और 2019 में भाजपा के रामचरण भोरा ने जीत दर्ज कर जयपुर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। इस बार इस सीट पर भाजपा, कांग्रेस और समेत कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने मंजू शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास से माना जा रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में क्या कांग्रेस भाजपा को जीत की हैट्रिक बनाने से रोकने में सफल हो पाती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
लोकसभा चुनाव का पहला चरण अब नजदीक आ गया है, जबकि लोग अपनी पसंद के नेता पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट ने पहले चरण के चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और आर्थिक स्थिति वाले उम्मीदवारों की संख्या का खुलासा किया है। हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के बारे में एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें अलग अलग दलों और निर्दलियों को मिलाकर 1,618 उम्मीदवारों का आर्थिक और आपराधिक ब्यौरा दिया है। 252 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 261 उम्मीदवार गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा 35 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज है। 18 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। वहीं करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो 450 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति 4,51,00,000 रुपए है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे नकुल नाथ की संपत्ति 716 करोड़ रुपए है। आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से दुर्गेश कटोरिया।
डियर वोटर्स, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store. and make sure your name is there in the electoral list. Voter Helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidates, election results, complaint and information on EVM and election process. Chunav ka parv, desh ka garv.
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए यात्रा परामर्श जारी कर भारतीयों से अगली सूचना तक ईरान और इजराइल के क्षेत्रों में यात्रा नहीं करने को कहा है। वर्तमान में ईरान या इजराइल में रहने वाले भारतीयों को भारतीय दूतावासों से संपर्क करने और अपना पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। साथ ही अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी गतिविधियों को सीमित रखने का आग्रह किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि म्यांमा विशेषकर रखाइन प्रांत में सुरक्षा स्थिति गंभीर है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि म्यांमा की यात्रा करने वाले भारतीयों को उचित सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अपने कर्मचारियों को सिटवे वाणिज्य दूतावास से यांगून में स्थानांतरित कर दिया है।
Heard about the fighting that is going on specifically in Rakhine State and other areas. We had issued some time back an advisory for our nationals so that they can take due care, and we want them to be safe. We've also relocated our staff from Sitwe Consulate to Yangon.
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस के सहयोग से की गई है। बेंगलुरु में पहली मार्च को यह विस्फोट हुआ था। कोलकाता में इन आरोपियों को आज विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने इन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु भेज दिया है। इन अभियुक्तों पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। मार्च महीने में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.85% हो गई। पिछले 10 महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति की यह सबसे निचली दर है। फरवरी में मुद्रास्फीति की दर 5.09% थी। 5 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.98 अरब डॉलर बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 648.56 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 15वें ओवर में 7 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी के समाचार की प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने आज भागलपुर आकाशवाणी केंद्र के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने आकाशवाणी केंद्र की विभिन्न गतिविधियों और प्रसारण की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी, विशु, विशुभ, बहाग बिहू, पोइला बैशाख, वैशाखड़ी और पुंतड़ू की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। पहले चरण के मतदान में केवल 7 दिन शेष होने के साथ चुनाव प्रचार तेज। देशभर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की लगातार रैलियां जारी। भारत ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने नागरिकों से ईरान और इसराइल की यात्रा से बचने को कहा। म्यांमा में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद भारत ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को सिटवे वाणिज्य दूतावास से यांगून स्थानांतरित किया और मार्च महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 4.85% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।